अस्पताल में दोनों से स्वास्थ्य कम खर्च होते हैं। एक मिनट में 13 से 14 स्वास्थ्य खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो श्वासोश्वास को देखने की साधना करेंगे तो उनका 25% स्वास्थ्य कम खर्च होगा, तो समझो 60 साल आयुष्य है तो 75 साल तक जी लेगा। समझो श्वासोश्वास 50 साल का है तो 62 साल जी लेगा। और जो जरा जरा बात में इधर देखेगा उधर देखेगा, चंचल होगा, चलते चलते बातें करेगा, बेमौसम के खाएगा, खड़े खड़े पानी पिएगा, खड़े खड़े पेशाब करेगा, खड़े खड़े खाएगा, उसके श्वास की शक्ति ज्यादा खर्च होती, वो चिड़चिड़िया हो जाएगा, गुस्सेबाज हो जाएगा। जिसकी दुर्गति होने वाली है वो विपरीत खुराक करता है। जैसे कार्तिक में दही खाना चाहिए, भादो में दही नहीं खाना चाहिए, तो वो भादो में दही खाएगा, फिर दिन को सोएगा तो त्रिदोष बढ़ेंगे। कार्तिक में करेला खाएगा, करेला कार्तिक में खाए तो मरे नहीं तो बीमार तो हो जाए, तो विपरीत आहार करेगा, रात का उजागरा करेगा, दिन को सोएगा। अमावस्या है, पूनम है, अष्टमी है, संसार व्यवहार करेगा, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी बीमार होगा, जल्दी मरेगा। तो जिनको सत्संग नहीं है वो विपरीत खुराक विपरीत कर्म करके अशांति लेते, जिनको सत्संग है फिर वह द्वेष नहीं करते, कपट का स्वभाव भी धीरे धीरे छोड़ देते सत्संग की बलिहारी। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, मनुष्य का क्या मंगल नहीं करती सत्संगति। तो सत्संग बहुत पुण्य जोर करते तब सत्संग मिलता है, या तो भगवान की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संत। और जिस जा सुजा पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस चीज के लिए सत्य स्नेह है वो उसे मिल जाता है। तो अति अंदर में उत्कंठा होगी तो भी सत्संग मिलेगा, पुण्य जोर होगा तो भी सत्संग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो भी सत्संग मिलेगा। तो अपना पुरुषार्थ, पुण्य जोर और भगवान की कृपा, तीनों में से कुछ होगा तभी आदमी सत्संग में जा सकता है, बैठ सकता है। और सत्संग में जब ये साधना होती है, जप होता है, तो रक्त के कण पवित्र होते, मन पवित्र होता है, फिर श्वासोश्वास की साधना करें 20%, 25%, 15% जितना श्वास तालबंद होगा उतना टका श्वास कम खर्च होगा। समझो एक मिनट में 13 श्वास खर्च रहे थे, तो श्वास गिनते जाओगे तो आदत पड़ जाएगी थोड़ी, तो फिर श्वास तालबद्ध चलेंगे तो 10 श्वास में काम हो जाएगा। तो जहां 130 श्वास खर्च होते थे वहां 100 होंगे। तो 13 की जगह पे 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। तो जितना तालबद्ध श्वास होगा उतना मन भी चंचल कम होगा, उतना दूसरे के मन के भाव को भी समझ सकेंगे कि हमको पटाता है, हमको घुमाता है, द्वेष वाला क्या करता है, सब पता चल जाएगा सहज में। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। और प्राण कई लोग ऐसे ही श्वास खर्च कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि 60 साल लिख के आता है, नहीं, 10 करोड़ या 10 अरब 6 करोड़ 13 लाख 12 श्वास है आपके, तो आप 13 नहीं ले सकते, एक श्वास भी आप ज्यादा नहीं ले सकते। फिर चाहे धीरे धीरे श्वास खर्च करें, समझो इतने पैसे आप धीरे धीरे खर्च करें या होटल में जल्दी खर्च करें, होटल खाली करना पड़ेगा, ऐसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसी कारण चांग देव ने श्वासों की उपासना धारणा किया और 1300 साल तक जिए। वशिष्ठ महाराज 60,000 वर्ष तक जिए। चौन ऋषि भी काफी जिए। दूसरे भी कई महापुरुष कायाकल्प करके शरीर के कणों को बदल के श्वास की उपासना करके फिर से लंबा समय जी, लेकिन अंत में शरीर तो मरने वाला है। लंबा समय जीने के बाद भी शरीर तो मरता है। शरीर मरने पर भी जो नहीं मरता है उस सोहम की साधना, वो मैं ही हूँ सब में, अनेक रूपों में मैं ही हूँ। वासुदेवम मैं ही माना, सब में बस रहा है वो आत्मा वासुदेव, सब वासुदेव है। बंदर में भी वासुदेव है, तो बंदर को क्यों मारते हैं, क्यों बंदर से मजाक करते हैं, ये करते हैं, सब वासुदेव की लीला है। एक ही वासुदेव अनेक रूपों में लीला करता, जैसे आप ही चैतन्य आत्मा है, फिर सपने में कोई मारने वाला, कोई मरने वाला, कोई देखने वाला, कोई हंसने वाला, कोई रोने वाला, ये सपने की लीला उस समय बड़ा दुख सुख देती है, लेकिन सब आत्मा की सत्ता से ही होता है। ऐसे ये सब आत्म सत्ता का विलास है, सो हम स्वरूप की उपासना करके समझ जाता। सांस ले फिर आकाश की तरफ एकटक देखे 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 अपने को आकाश रूप चिंतन करने से भी हृदय आकाश, चित्त आकाश और चैतन्य आकाश की एकता हो जाती है। प्राण अपान को सम करते हैं, श्वास लिया फिर रोका, धीरे धीरे छोड़ा, धीरे धीरे प्राण अपान की गति सम करने से सुषुम्ना का द्वार चल पड़ता है। स्वभाव में बड़ा आनंद आता है और बाह्य सुख की गुलामी कम हो जाती। शरीर को साफ सुथरा पवित्र रखे, जैसे किसी को छुए नहीं तो फिर और शरीरों से घृणा होने लगेगी, काम विकार आदि से। बेटा अच्छा चलता है तो इतना फायदा नहीं जितना बेटा या पत्नी या परिवार वाले अपने से गलत चलते हैं। अच्छा चलेंगे तो मोह ममता में समय बीत जाएगा, बुरा चलेंगे तो वैराग्य होगा। इसलिए भगवान की कृपा है। राजे लोग देखते थे कि हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है, दुखी होते थे। फिर जब सत्संग मिलता था तो समझते कि भगवान की कृपा है, कहना मानता तो ममता में मर जाते, नहीं मानता तो ठीक है वैराग हो गया। तो आजकल का जमाना तो बच्चों का स्वभाव ऐसा बना दिया टीवियों ने और अखबारों ने और वातावरण ने कि माँ बाप का कहना ही नहीं मानो, उल्टा चले तो माँ बाप को भी वैराग आवे। पहले तो सत्संग से विवेक से वैराग आता था कि लोग एकांत में चले जाते थे, अब तो इतना विवेक वैराग नहीं रहा तो गड़बड़ से वैराग दिलाते भगवान कि चलो बेटे गड़बड़ करो, बेटियां गड़बड़ करो, है ही गड़बड़ करो, संसार से वैराग आए। महाभारत में लिखा है दो शब्दों से बंधन है और तीन शब्दों से मुक्ति है। मम ये मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी मेरा है, धन मेरा है, ममता मम मम से बंधन है, न मम ये मेरा नहीं है, मुक्त हो गए। हमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति कोई आकाश पाताल में नहीं है। ममता का त्याग हो गया तो आसक्ति का त्याग हो गया, मुक्त है। शरीर तो ऐसे ही समय पाकर मुक्त हो ही जाएगा, मर ही जाएगा, और मन में आसक्ति नहीं तो दोबारा जन्मना नहीं है। भगवान का ध्यान भजन आनंद लिया तो उस आनंद में लीन होना है। तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, एक तो मनुष्यत्व मनुष्यता के गुण, दूसरा मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा, तीसरा महापुरुष का संश्रय। महापुरुष का सत्संग तो मिल जाता है लेकिन लोग मेरा सिर दर्द है, मेरा छोकरा मैं कहना नहीं मानता, मेरा धंधा नहीं चलता, तो महापुरुष का संपर्क का फायदा ऊंचा नहीं लिया। मोक्ष की इच्छा नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, पशु जैसा ही जीवन है। जैसे हीरे जवाहरात वाले से सब्जी मांगा तो क्या मांगा। ऐसे जो महापुरुष से मुक्ति नहीं जानता, ईश्वर का रस नहीं चाहता, तो ऐसे ही कंकड़ पत्थर चाहता है। तो मनुष्यत्व, मनुष्य के सद्गुण आ जाए, मुमुक्षुत्व। कुछ लोग होते हैं कि भाई जरा कमजोरी है, चलो सर्दियां आई है, बादाम ठोकते, काजू पिस्ता माजून बनाते। अरे बेटा, किडनी और लीवर पहले ही कमजोर है, आंखों पे सूजन है तो किडनी कमजोर है, इसीलिए तो आंखों पे सूजन है। तो जैसे भोजन में सावधानी रखने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, ऐसे विचारों में और संग में सावधानी रखने से मन तंदुरुस्त रहता है, और उद्देश्य की सावधानी से बुद्धि तंदुरुस्त रहती है। तंदुरुस्त बुद्धि बुद्धिदाता में लगेगी, तंदुरुस्त मन प्रसन्न रहेगा, तंदुरुस्त तन निरोग रहेगा। तो ये आपके हाथ की बात है, पुरुषार्थ करके बातें जान लेनी चाहिए। दुख आए तो दुख में डूब न जाए, सुख आए तो सुख में चिपक न जाए, सुख और दुख को बीतने वाला समझे। आखिर कब तक संसार, बड़े बड़े राजे ऐसा बनूं वैसा बनूं, लेकिन जो बने उनका क्या है। मैं ऐसा बन जाऊं लेकिन तू बन जाए उसके पहले जो बन गए वो कहां गए। कुछ बनने की इच्छा आवे उसके पहले विवेक लगाओ कि वो बन गए, ऐसे बन गए फिर क्या हो जाएगा। मैं नेता बन जाऊंगा, मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो आज तक के मिनिस्टरों ने क्या ले लिया। मैं बड़ा सेठ बन जाऊं तो क्या जग मार लेगा। अरे मैं कौन हूँ, अपने आत्मा को जान लूं, अपने परमात्मा को पा लूं। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं फलानी बन जाऊं, तो क्या जख मार लेगा। बनेगा वो बिगड़ेगा, जानेगा वो तरेगा। अपने आत्मा को जानो। जेकर मिले तराम मिले, अगर मिले तो प्रभु मिले, रानी मिली, राजा मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, आखिर क्या जख मारा। इतने दिन मिले तो अभी पेट नहीं भरा क्या। दुनिया जेकर मिले तराम मिले, बेउ सब मिलो तो छा थो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थो तो छा थो। मन की वासनाएं पूरी हो गई तो, इच्छाएं पूरी हुई तो क्या बड़ी बात हुई। भगवान मिले, भगवान का ज्ञान मिले, भगवत शांति मिले, भगवत सुख मिले, ऐसा मिले कि बिछड़े नहीं। पत्नी भी बिछड़ जाएगी, पति भी बिछड़ जाएगा, पद भी बिछड़ जाएगा। तो जो नहीं बिछड़े वो है अपना आत्मा। उस आत्मा में शांति, उस आत्मा को सोहम स्वरूप जाने, वही हूँ मैं। जो इन आँखों से देखता हूँ वो सभी के आँखों से मैं ही देखता हूँ। मन अलग अलग है, शरीर के मॉडल अलग अलग है, लेकिन मैं एक ही हूँ सब। ओम ओम ओम, इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान करे, प्रीतिपूर्वक भक्ति करे। सत्संग का तो आदर करें, सेवा भाव से काम करने से मन में आनंद रहता है। काम में लापरवाही नहीं करना चाहिए, काम में चोरी नहीं करना चाहिए। जब काम करे तो ईमानदारी से करे, तत्परता से करे, और द्वेष नहीं रखना चाहिए। कपट रखने से अंतःकरण मलिन होता है।